ओम शांति। परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का हम सभी एक हाथ हिलाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, आपकी पर्सनैलिटी इस संस्था में ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी आपने जहां जहां कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में अपना प्रभावशाली वक्तव्य दिया, वहां सब तरफ आपका व्यक्तित्व तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत सी बातें आपके जीवन में इतनी सहज है, यहाँ का हर एक भाई या बहन जानते हैं कि आप संस्था के तीन वरिष्ठतम भाइयों में हमारे बड़े भ्राता जी हैं, उनमें से एक हैं। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, मुख्य प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में से आप एक हैं, और आप अपनी बहुत युवा अवस्था में 1955 में इस ज्ञान के संपर्क में आए। आपके माता पिता ने पहले प्यारे बाबा को पहचाना, फिर आपने भी न सिर्फ पहचाना बल्कि सारे विश्व को उनकी पहचान दी। प्यारे पिता परमात्मा की ये सारी शक्तिशाली किरणें, उनका ज्ञान, उनका सिखाया हुआ राजयोग आपकी पर्सनैलिटी से सहज भाव से उदय होता हुआ सब तरफ देश में ही नहीं विदेशों में भी फैलता रहा। आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स ऑनर्स में 1953 में कंप्लीट की, 1955 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने लॉ कंप्लीट की, और आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 1956 से हैं। 1973 में आपने फाइनेंस मैनेजर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया यहां से रिजाइन करके पूरी तरह से सेवाओं में अपना तन मन धन लगा दिया, पूरा समय लगा दिया। वैसे तो जब से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से आप ज्ञान की रोशनी फैलाने में व्यस्त हो गए थे, लेकिन आपने ना सिर्फ अपनी वाणी से बल्कि अपनी लेखनी से भी ये ज्ञान का प्रकाश सब तरफ फैलाया। आप प्योरिटी पेपर के चीफ एडिटर हैं, जो कि हर महीने न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। उसके अतिरिक्त आप पॉलिटिकल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में मुख्य वक्ता के रूप में इस संस्था का प्रतिनिधित्व किया है। कितने ही देशों में आपका प्रतिनिधि के रूप में जाना हुआ, और इसके अतिरिक्त वहां के ब्राह्मण भाई बहनों का, अपने बीकेज का, उनकी स्थिति अच्छी बनाना, उनको और पवित्रता की तरफ अग्रसर करना, उनका पुरुषार्थ सहज भाव से बढ़ाना, ये आपकी विशेषता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप हंसते हंसते समझा जाते हैं। आपने रशिया, यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, साउथ ईस्ट एशिया और कैरेबियन कंट्रीज में सेवा अर्थ जा जाकर कितने ब्राह्मणों की स्थिति को बहुत आगे बढ़ाया है। हम आपसे आज समझेंगे कि सहयोग देना, जो बाबा ने आज भी कहा था कि दान देने का अर्थ है सहयोग देना, तो वो किस तरह से सहज भाव से हम सहयोग देते भी रहें और वो सहयोग हमारे पुरुषार्थ को भी बढ़ाता रहे। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई जी आज इसी के बारे में समझाएंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये इतना बड़ा डायमंड हॉल कैसे बना? सबके सहयोग से। हम सब यहाँ 20-22 हजार बहन भाई आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं? सबको सहयोग देने और सहयोग लेने। तो सरकार तो कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, और भगवान की सरकार क्या कहती है, अच्छे दिन आ गए। सच्ची बात है, उनके लिए आने वाले हैं। जब मुक्ति होगी दुखों से तो सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, पर हमारे तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए या अच्छे से भी अच्छे आए, हमारे दिन अच्छे आए या अच्छे से भी अच्छे आए, क्या ख्याल है? और जो आगे आएंगे वो कैसे आएंगे, इससे भी अच्छे आएंगे, बताइए और क्या चाहिए। अभी हम गीत सुन रहे थे तो मैं सोच रहा था आप में से कईयों को गीतों को गाने का या सुनने का तो शौक होगा, हैं? कम से कम बाथरूम में तो सभी गाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो खुशी का गीत होता है वो कई जने मिलके गाते हैं, जिसको कोरस कहते हैं, है ना? अब भंगड़ा डांस करना है तो एक व्यक्ति का मजा नहीं आएगा, गुजराती गरबा करना है तो बहुत सारे चाहिए। जितने खुशी के गीत हैं सब मिलके गाते हैं, पर आपने कभी सबको मिलके गम का गीत गाते देखा नहीं है? क्योंकि इंग्लिश भाषा में कहते हैं लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा संगठन, आज दुनिया में जितने परिवार हैं सबसे बड़ा और सबसे खुश खुशहाल खुशकिस्मत और खुशनुमा परिवार कौन सा है? हमारा। अगर कोई लटका हुआ चेहरा लेकर हमारे लोगों के सामने आ भी जाए तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो भी हंसने लग जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आप रोते हुए व्यक्तियों से जाकर देखोगे तो आपके ऊपर भी असर आएगा, और हंसते हुए देखोगे तो आप भी हंसने लग जाओगे। इसलिए इसका राज क्या है? हम कहते तो हैं ये सहयोग कोई मांग कर लेने की या कह कर देने की चीज नहीं है, है ना? बाबा ने कहा दान का अर्थ है सहयोग। आज की दुनिया जो दान करती है वो कोई सहयोग नहीं देती, उनको पता ही नहीं दान क्या होता है, किस चीज का दान करना चाहिए। मान लो एक फकीर बैठा है रेलवे स्टेशन के सामने, आप उसको देख के, हम लोग तो खैर और तरह से सोचते हैं, पर आम व्यक्ति उसको देख के एक रुपया दे देता है, मैंने दान कर दिया। लेकिन क्या मैंने उसकी फकीरी दूर की या एक रुपया दे के समझा कि चलो भी मेरा हिस्सा तो पूरा हो गया? अगले दिन आओगे वही फकीर उसी जगह बैठा होगा। कई लोग विधवा आश्रम बना देते हैं, जो विधवा नहीं है हो सकता वो उनसे भी ज्यादा दुखी हो, तो आपने एक थोड़े से टुकड़े को खुश करने की कोशिश की। अंध विद्यालय बना देते हैं, कई अंधे से, दो आंखों वाले अंधे से भी ज्यादा दुखी होंगे दुनिया में, इसलिए उनको सहयोग देना ही नहीं आता। आपको पता है आपके पास एक गिलास पानी है और आपने सारे पेड़ को पानी पिलाना है तो कैसे पिलाओगे? सबको पता है कि पेड़ की जड़ में आप दो बूंद पानी भी डाल दोगे तो सारे पेड़ को मिलेगा कि नहीं? आप दूध का गिलास पीते हो तो उसकी जो ताकत बनती है वो सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। इसलिए हमारे आपस में मिलने का, प्यार से रहने का मुख्य कारण यही है कि हम एक के हैं। हम एक के हैं इसलिए हम एक हैं, ठीक है कि नहीं? आप अगर समझते हैं कि हम एक के हैं इसलिए हम एक हैं, तो जरा हाथ उठाइए, ताली ना बजाना। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा अब चलते हैं इतिहास देखने। बाबा हमको रोज ही नए नए तरीके से हमारी ही कहानी सुनाते हैं। दुनिया में कहते हैं कि दादी दादा नानी नाना कहानी सुनाया करते थे, आजकल तो वो दिन भी गए, लेकिन हमारे तो रूहानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं जो मदर भी हैं, तो हमको कहानी के रूप से हमारा इतिहास सुनाते हैं। कोई प्रकार की ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाते। तो कहानी तो आसान है, सारी दुनिया मानती है कि इस विश्व का रचयिता, इसका क्रिएटर कौन है? परमात्मा। ठीक है, अच्छा, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, दुख करता सुख करता है, मुक्ति दाता है। अगर परमात्मा के गुणों की आप वर्णन करें तो पूरी किताब बन जाए। अब सोचो कि ऐसा परमात्मा कैसी दुनिया बनाएगा। एक व्यक्ति मकान बनाता है तो अपनी हैसियत के अनुसार बनाता है, लखपति अपनी तरह का बनाएगा, करोड़पति अपनी तरह का बनाएगा, अंबानी अपनी तरह का बनाएगा, है ना? अच्छा, लेकिन परमात्मा अगर बनाएगा भी तो पुरानी दुनिया में नया मकान बना लेगा। लेकिन परमात्मा जो परम पिता है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं और जो सबका कल्याणकारी है, तो वो जब दुनिया रचते हैं तो कैसी रचते होंगे, आप सोच सकते हैं, हैं? और हर चीज नई रची जाती है, कोई भी रचने वाला पुरानी चीज तो रच नहीं सकता। यहां बहुत सी माताएं बैठी हैं, क्या माताओं आप पुरानी बासी रोटी पका सकते हो? कोई माता बासी रोटी पका के दिखाए, क्या होगा? ताजी बनाएंगे बासी हो जाएगी। कोई मकान बनाने वाला पुराना मकान बना के दिखा सकता है? कोई मोटर कार कंपनी पुरानी कार बना सकती है? अगर किसी कार का हॉर्न के सिवाय सब कुछ बजता हो तो उस कार को, उस कंपनी को आपने ये कार बनाई है तो कहेंगे हमने थोड़ी ये बनाई थी, हमने तो नहीं बनाई थी। इसलिए पहली बात जो बाबा ने हम बच्चों को ठोक 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 कर भर दी है वो ये है कि परमात्मा ने नई दुनिया रची। अब जो नई है उसकी निशानी क्या होगी? हम सोच सकते हैं कि नई दुनिया में, और आज की दुनिया को तो हम जानते ही हैं, नई दुनिया में हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक तरीके से होती थी। बस उसका समय भी ठीक था, स्थान भी उचित था और उसके होने या करने का तरीका भी सही था। एवरीथिंग हैपेंड एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड इन द राइट मैनर। ये नई दुनिया की निशानी है। और आज आप देख लीजिए, तीनों में से किसी न किसी की गड़बड़ होगी, या तो समय ठीक नहीं होगा, किसी को बहुत अच्छा गाना आता है रात के 12 बजे अलापना शुरू कर दे तो है, या स्थान ठीक नहीं होगा कि जाना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर कहते गाड़ी क्यों नहीं चलती, या करने का ढंग ठीक नहीं होगा है, बोलने का ढंग। आप जानते हैं यूनियन के लीडर जो होते हैं उनकी डिमांड सही होती है, पर उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि दूसरा काम करना भी चाहे तो सोचता है मैंने नहीं करना, कितनी बदतमीजी से बोल रहा। इसलिए देवताओं के लिए कहा गया है सर्वगुण संपन्न, अच्छा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा नहीं तोड़नी उन्होंने। कुदरती ऐसे हैं कि मर्यादा नहीं तोड़नी। तो ऐसी दुनिया जिसको हम कह सकते हैं हारमोनी की दुनिया, हर चीज जैसे हारमोनियम बजता है कि नहीं, सात सुर बजते हैं, तो सात रंग की दुनिया, सतरंगी दुनिया भगवान ने बनाई, नहीं बनाई। अच्छा फिर क्या हुआ उस दुनिया में, क्या होता था वो तो हम जाके देखेंगे, पर सोच तो सकते हैं ना। उस दुनिया में हर चीज नेचुरल थी, यानी कुदरती थी, कुछ करना नहीं पड़ता था। आपको दान देना हो, सहयोग देना हो, आप देके दिखाइए, सतयुग में सहयोग कोई लेने वाले नहीं मिलेगा हैं? आप कहेंगे मैं खुशी बांट दूं, वहां कोई खुशी सबके पास बहुत है। तो अर्थात जब कोई चीज नेचुरल होती है, खूब भरपूर होती है, तो क्या करती है, वो देती है, ठीक है ना। अगर हर चीज, कोई चीज भरपूर है तो देगी, क्यों देगी भाई? इसलिए ये गौर से सुनने की बात है। वैसे तो आप सारे ही गौर से सुन रहे हैं, पर गौर से भी गौर से सुनने की बात है। वो ये है कि दुनिया में कोई चीज अपने लिए नहीं बनी, ये दिल पे नोट कर लो, डायरी में नहीं। दुनिया में कोई चीज अपने लिए नहीं बनी, आप देख लो, ये आपके ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा है, ठीक है, ट्यूब लाइट जल रही है, ये अपने को रोशनी दे रही है, क्या ख्याल है आपका है? एक पेड़ पे सेब लगा हुआ है, वो अपने को खाने के लिए बना है। चलो आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, ये कुर्सी या सोफा अपने लिए बना है क्या? अगर आपके पास एक गोदाम हो जिसमें 30,000 कुर्सियां रखी हों, तो उसकी कोई वैल्यू है? खाली कुर्सियां पड़ी हों तो क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं, कोई बैठेगा तो वैल्यू है। आप जानते हैं कि कोई मकान हो उसमें कोई 100 साल ना रहे, उसको कौन सा बंगला कहते हैं, बताइए, आपको पता ही है ना कौन सा, क्यों के रहने के लिए मकान बना। तो इसलिए ये बात बहुत बाबा ने हमको समझाई है कि कोई चीज अपने लिए बनी ही नहीं, और देवता ये जानते थे। नाम उनका देवता क्यों था कि भाई अगर आम का पेड़ है और उसमें आम लग गए तो क्या, किस लिए बने हैं, लोगों के खाने के लिए। और कोई भी फलदार पेड़ को काटना पसंद नहीं करता कि भाई ये तो फल दे रहा है। इसलिए कहा गया है नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते। हम कह तो देते हैं, लेकिन इसका भाव अर्थ ये है, चांद है, अब बिल्कुल 16 कला संपूर्ण जब चांद होता है तो रोशनी किसको देता है, अपने को। सूरज गर्मी और रोशनी किसको देता, अपने को। तो ये फंडामेंटल असूल है कि पहली बात तो अपने लिए नहीं बनी, और दूसरी बात देने के लिए बनी है। तो जरूर देगा किसी को, पंखा हवा अपने को तो नहीं देता, तो किसी को तो देगा ना। इसलिए बाबा ने बताया कि हम लोग, हम और आप जब भरपूर थे तो देने वाले थे, नाम हमारा देवता था, सीधी बात हो गई। देवताओं को कहना नहीं पड़ता आप दो, आप ही देंगे, उसका काम ही है देना, क्योंकि भरपूर है। इसलिए तो जब भगवान ने दुनिया बनाई, शिव बाबा ने, और हर चीज हार्मोनियस बनाई, हर एक को पता था कि हम भरपूर हैं, तो कहने की जरूरत नहीं, सब दे रहे थे, कोई लेने वाले नहीं था। वहां मजेदार बात यह है कि जब देने वाले हैं तो कोई लेने वाला नहीं, और आज जब लेने वाले हैं तो कोई देने वाला नहीं, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़े सुख चैन से श्री बाबा ने हमको समझा दिया कि बच्चा ये देवलोक है, और तुम वहां जाओगे तो देखना सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुखी सुख है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी बात है, वो ये है कि आखिरकार हम इतने समझदार देवता सुख भोग रहे हैं, जन्म जन्मांतर सुख भोग रहे हैं, अचानक क्या हुआ? जो हमारी बुद्धि फिर गई है, क्या हुआ? तो बाबा कहता है कि जब देवता थे, हालांकि उनको ये भी पता नहीं था भगवान परमात्मा कोई है, उसने हमें सुख दिया ना, कोई वहां मंदिर था, बाबा कहता है, हैं, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे, ना कोई देने वाले को भूल गए, मजा ले रहे हैं। लेकिन हमको अंदर से पता था कि हम आत्मा हैं, भले हम आत्मा आत्मा नहीं करते थे, अंदर से पता था आत्मा है। इसलिए यहां पर जो वस्तुएं हमें मिली अच्छी अच्छी, ना तो उनको लेने पर हम समझते थे हमने कुछ ले लिया, ना जब शरीर छोड़ते तो हम समझते थे हाय हमारा सब कुछ लूट गया, क्यों? अंदर से पता मैं आत्मा हूं। आज भी हम लोग जो कुछ करते हैं किस लिए करते? दुनिया वाले क्यों नहीं करते? उनको पता नहीं हम आत्मा हैं, और हमें पता है कि आत्मा के अंदर जो भर लोगे वो आपका सदा के लिए, जो शरीर का होगा यहीं रह जाएगा। तो उनको नेचुरल पता था, इसलिए वो छीना झपटी बैग बोरो स्टील खींचा तान नहीं करते थे, भी पता है आत्मा है, आत्मा यहां शरीर छोड़ेगी आगे मिल जाएगा, और जब आएगी तो अपने कर्मों से आई है, नेचुरल था। और इसलिए वहां पर ना बीमारी थी, ना अस्पताल था, ना कोई गरीब था, ना मरने का दुख था, ना जन्मने का कोई था, क्यों? शरीर कैसे छोड़ते थे? कोई कहता है देवता मर गया, मुंह से ही नहीं निकलता कि वो जैसे हम रात को सो जाते हैं ऐसे शरीर छोड़ देते थे, और जैसे सुबह आंख खुलती है नए शरीर में आ जाते थे। तो ये फर्स्ट क्लास सिलसिला था। फिर क्या हुआ? उस वक्त हमारी दुनिया, हम सब हैं, हारमोनी है, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, अंदर से पता है हर चीज एक दूसरे पर निर्भर करती है, हाँ? पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हर एक को पता था कि पांच उंगलियां बनी हैं भाई, ये पांचों बराबर की नहीं है। उनको पता था कि इसी तरह ही काम चलेगा। कहते हैं एक बार पांच उंगलियां लड़ पड़ी, गुट्ठे ने कहा मैं तो सबसे अलग थलग हूं, मैं सबका माई बाप हूं, है? तो बीच वाली उंगली कहती है तुम उंगली थोड़ी कहलाते हो, तुम तो गुट्ठा कहलाते हो, अनपढ़ लोग लगाते हैं गुट्ठा। तो फिर बीच वाली ने कहा देखो मैं सबसे लंबी हूं, मैं सबसे बड़ी हो गई, ठीक है? तो उससे नेक्स्ट वाली ने कहा अंगूठी तो मुझे पहनाते हैं, तुम्हें थोड़ी पहनाते हैं। और ये इधर वाली थी, उसने कहा तिलक तो मेरे हाथ से ही लगाते हैं। और लास्ट ने कहा गोवर्धन पर्वत तो भगवान ने मेरे से उठवाया था, लड़ पड़े, अब क्या करें। अब हर व्यक्ति अगर अपनी विशेषता ही बताना शुरू कर देगा तो मतभेद हो जाएगा। आखिर किसी ने कहा लड्डू बना के दिखाओ हर उंगली। अब जब लड्डू बनाना पड़ा तो बोले सबकी जरूरत है, सबका सहयोग चाहिए। आज का हमारा विषय क्या है? सबका सहयोग। तो लड्डू खाओ ना, से लड्डू बना तो सकते हो, ताली तो बजा दो, कभी लड्डू कैसे बनता है? ये है सबका सहयोग। अच्छा, जब हमने ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं, चलते चलते जो दिखता था उसको मानने लग गए, जो नहीं दिखता था उसको नहीं मानने लग गए। अब किसी अनपढ़ को क्या होता है? अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है? वो कहते बल्ब जल रहा है, मैं घर में बल्ब ले आता हूं। पढ़ा लिखा कहता है पहले बिजली का करंट तो आए, उसको तो बिजली दिखती नहीं, वो कहता भाई ऐसे बल्ब जल जाएगा, है ना? मोटी मिसाल है, आप किसी जंगल में बैठे हुए किसी आदमी से पूछो कि सूरज धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूरज के गिर्द घूमती, क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? कहेगी मैं तो यहीं खड़ा हूं, सूरज सुबह वहां था, दोपहर को वहां है, शाम बहुत सूरज ही घूम रहा है। और ज्योग्राफी पढ़ा हुआ क्या कहेगा? उल्टा। इसलिए मनुष्यों ने जो दिखता था बॉडी कॉन्शियस हो गए। अब बॉडी कॉन्शियस में क्या हो गए? हम और हमारा से छोड़कर मैं और मेरा हो गया। तो पहली बात क्या हुई, जिसको बाबा कहता अभिमान जागा, देह भान जिसको कहते हैं, कि सारा कुछ हम लेना देना है, हम डिपेंडेंट हैं, हम देते हैं तो हमें मिलता है, उसको भूलकर मैं, अब मैं कॉन्शियसनेस आएगी तो क्या होगा। तो भक्ति में कहते थे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो धर्म और पाप शब्द को उड़ा दो, आप ये देखो कि हम लिमिट में आ गए, कहा हमारी दुनिया, हमारे भाई बहन, और फिर आ गया मैं। अच्छा, अब आप देखोगे कि गाय भैंस को तो रस्सी से बांधा जाता है, मनुष्य को देखने वाली रस्सी की जरूरत नहीं है, वो आप ही बंध जाता है। फिर हमारे अंदर मोह आ गया, क्योंकि मैं तो ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरे कपड़े, हमारा तो उड़ गया। अच्छा, जब वो आया तो मोह पैदा हो गया। अब सोचो, कहते हैं हम लाइफ इज ए जर्नी, कि जीवन एक यात्रा है। अच्छा, यात्रा वो समझेगा जो समझेगा यात्रा अलग चीज और यात्री अलग चीज है। मैं चढ़ा हूं, मैं दूसरी जगह उतर गया, मैं थोड़ी खत्म हो गया, यात्रा पूरी हो गई। तो जब बॉडी कॉन्शियस हुए तो क्या समझने लग गए, आप मरे जग पर ले, हाय हम मरे, ये सारे रिश्तेदार मामे चाचे, इतना बड़ा मकान बनाया, सब जा रहा है, हाय मैं मरू ना। बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि लोग शरीर छोड़ने ना छोड़ने के लिए कितने उपाय करते हैं, हालांकि मुंह से कहते हैं कि जब आई आ जाती है तो कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए पहला ज्ञान पैदा हुआ बॉडी कॉन्शियस का, पिंजरे में आ गए, और दूसरा हुआ कि बॉडी छूटी तो सब कुछ गया। तो फिर क्या होगा, मुंह पैदा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, कि देवताओं को पता है कि यहां छोड़ा वहां मिल गया। आजकल के एक डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर को भी पता होता कि अगर मैं फरीदाबाद से ट्रांसफर होकर मैं कहीं गाजियाबाद चला गया तो ये मुझे इसी तरह का दफ्तर मिल जाएगा, इसी तरह का घर मिल जाएगा, मैं कलेक्टर हूं, मिलना तो मेरे कलेक्टरी से है ना, वो भी भूल गए। अच्छा, मोह हो गया। अब जब मोह हो गया तो मेरा हो गया, मेरा तेरा, मेरा तेरा, हमारा तो चला गया। तो फिर सोचा कि लोभ हो गया कि मैं इकट्ठा कर लूं, मैं इकट्ठा कर लूं, हालांकि पता है इकट्ठा कुट्ठा जितना मर्जी करते रहो अंदर वही जाएगा जो आपके कर्म के हिसाब से है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सब भूल गए। तो फिर क्या हुआ, देवता से लेवता बन गए। लोभ में क्या होता है, आजा आजा आजा। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब नहीं मिला किसी से तो गुस्सा आना शुरू हो गया है। किसी दुकानदार से कोई व्यक्ति आए, क्या ये दिखा, फिर क्या ये दिखा, फिर क्या ये दिखा, उसको उम्मीद रहे कि ये खरीदेगा तो इतना बचेगा, ये खरीदेगा, दिखाता रहा, फिर कहे बारिश बंद हो गई अब मैं जा रहा हूं, तो दुकानदार का तो दिल दुखेगा ना। इसी प्रकार से अब हमारा ये हाल हो गया कि भाई कहां देवता कहां लेवता, तो सारी इज्जत आबरू चली गई, मिला भी कुछ नहीं, और उल्टा रास्ता चलने लग गए, देने में सुख है लेने में बोझ है, ये भी भूल गए। अच्छा, फिर आ गई, सारे पैदा हो गए तो काम विकार भी आ गया। जो आत्मा का सुख था, आत्मा नेचुरली आनंद स्वरूप है, आपको पता है कि आत्मा सत है, खत्म नहीं होती, चित्त है, अनुभव करती और आनंद स्वरूप है, उसको भूलकर हम बॉडी में आ गए तो सुख दुख शांति अशांति डबल में फंस गए, और नतीजा क्या हुआ, फिर वो सुख तो भूल गए, इंद्रियों के सुख, खाने का सुख, कान का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, काम विकार का सुख, ये भूल गए कि ये सुख तो शरीर के साथ है। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको सुनाई भी नहीं देगा, टूटी लगानी पड़ेगी। अच्छा, दिखाई भी नहीं देगा, मोटे से मोटा चश्मा चढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ खिलाओ तो कहोगे, कहो हलवा खा, नहीं मैंने नहीं खाना, क्यों भाई तुझे मिल रहा है। तो इंद्रियों के सुख तो आपको दुख देने वाले हैं, इच्छा पैदा होगी कर नहीं सको, कितनी खराब बात है। मान लो कोई सेठ जी हैं, उनको डायबिटीज है, ज्यादातर रहती है अमीर लोगों को, कार में बैठे हैं, एक जगह उनके ड्राइवर ने कार रोक ली, रसगुल्ले की दुकान है और रसगुल्ले खा रहा है, सेठ जी देख रहे हैं, सारी दुकान खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है बेटा मरना नहीं है तो रसगुल्ले को हाथ नहीं लगाना। अब आप सोचो, ऐसे लग रहा है सब रसगुल्ले ही खा रहे हैं जवानी। अच्छा, अब आप सोचो कि भाई खुशकिस्मत कौन उस वक्त, ड्राइवर या सेठ? इसलिए बाबा कहता है सारी उनकी लुटिया डूब जाती है। तो दुखी अशांत, तो उनको समझ भी नहीं आता कि हम दुखी हैं, तो समझते हैं इसके मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं सुखी हूं। कोई कहता मैं पहलवान हूं इसको मारूंगा मैं सुखी हूं, कोई कहता मैं बहुत पढ़ लिख गया मैं सुखी हूं, पर टोटल सुख कहां है? तन का है तो मन का नहीं, मन का है तो धन का नहीं, धन का है तो परिवार में नहीं, नहीं तो कुदरत बैठी है, हैं? आंधी तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कहां के सुखी। इसलिए बाबा ने हमको क्या समझाया कि बच्चे दो कारण हैं सिर्फ, जिसके जिनको जानने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली सहयोगी बन जाता है और उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक कारण तो यह है कि तुम आत्मा हो, जब आपने आत्मा समझ लिया तो आपको पता लग गया, वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मा अपना मित्र है अपना शत्रु है, हमारा कोई और मित्र शत्रु नहीं, आत्मा समझ लिए तो पता लग गया मेरी परमानेंट तिजोरी कौन सी है। स्टेट बैंक का लॉकर भी लुट जाएगा, आजकल एटीएम को डाकू उठाकर ही ले जाते हैं, लेकिन चाहते हैं हम परमानेंट खुशी। आप परमानेंट खुशी चाहते हो या टेम्परेरी? बोलो जी, जो परमानेंट कहते हैं हाथ उठाओ, सब परमानेंट कहते हैं। अच्छा, आप रखोगे कहां उसको? आपको परमानेंट खुशी मिल जाए भगवान के, आज ही ले लो, आए हो मधुबन में, रखोगे कहां बताओ? शरीर में रखोगे तो शरीर तो छूट जाएगा, फिर कहां रखोगे? आत्मा में, क्योंकि आत्मा में रखोगे तो आगे भी जाएगी। तो ये इसकी राज है कि जब आपने आत्मा मान लिया तो आपको सब पता लग जाएगा कि प्रेम भी जो है परमानेंट जा सकता है, शांति भी। नहीं तो सोचता है व्यक्ति स्वार्थ के अनुसार इससे दोस्ती कर लो फायदा है, जब फायदा आता मुंह उधर कर लो, वो भी ऐसे करता है। तो बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति कभी भी परमानेंट सोच ही नहीं सकता, संस्कारों को सोच ही नहीं सकता, तीसरी आंख नहीं है। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आज आप देखो, कहां हम कहते थे सारी दुनिया हमारी, सतयुग में कोई भारत और पाकिस्तान और जापान और चीन होता है, हैं? बहन जी कह रही थी भाई साहब वहां गए वहां गए वहां गए, मुझे तो शर्म आती थी कि जिस देश में जाओ पहले तो लाइन में खड़े हो, फिर आपका वो पासपोर्ट चेक करेगा जैसे आप कोई गुनाहगार हैं, हैं? कितनी शर्म की बात है, तोता तो उड़ के उस तरफ फ्री जा सकता है, हमें चेकिंग हो रही है, हमारी कपड़े टेस्ट हो रहे हैं, सूटकेस खोलो, ये कोई दुनिया थोड़ी है। और फिर देखो कि आज दुनिया में जितना धन है उसका 60% हथियारों पर खर्च होता है, हर वक्त डरे रहते हैं, आसमान में भी उनके रॉकेट घूम रहे हैं कि हमला ना कर दे। अब बताओ किस कारण से कि टुकड़े किए हुए हैं, ठीक है? तो 60% तो वैसे ही गुम हो जाता है, इसलिए वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते, सब चीजें उनके टेम्परेरी हैं। आप इकट्ठा करना शुरू कर दो, जितना करोगे उतना भय बढ़ता जाएगा, आज भी गया कल भी गया। गरीब आदमी एक डॉक्टर बुलाएगा, अमीर के लिए 20 आएंगे बचा लो बेचारे को, दुखी है ना, इसलिए भय और चिंता भी लग गई। तो पहली बात बाबा ने हमें, उसका शुक्रिया लाख लाख, वो ये बताई कि बच्चे तुम आत्मा, ये गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मा अनादि है, अविनाशी, अनंत स्वरूप है, तलवार उसे काट नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे डुबो नहीं सकता। अब जब ये पता लगता है तो कम से कम ये तो पता है कि जो मैंने इकट्ठा करने कहां डालूं, स्टेट बैंक में डालूं या इस तिजोरी में डालूं। अच्छा, दूसरी बात, आप देखो कि जितनी खुशी देने वाली चीजें हैं वो कहां हैं? आपकी जेब में है, आपके नाक में है, आपके कपड़ों में है, आपके मकान में है या आत्मा में है? शांति, शांति की अनुभूति किसको होती है, डेड बॉडी को या आत्मा को? प्रेम, प्रेम की अनुभूति किसको होती है? सुख की अनुभूति किसको होती है? तो बाबा ने कहा जब आत्मा समझोगे तो ये भी पता लग जाएगा कि आत्मा ही, मुरली में बाबा ने कहा कि शरीर तो पुतला है, आत्मा ही सब कुछ करती है और आत्मा ही भोगती है, इसलिए ये हमको दूसरा ज्ञान मिल गया। अच्छा, फिर जब आपको पता लग गया कि आत्मा में इकट्ठा होना है तो हम आजकल क्या करते हैं, अपने घर को बहुत साफ करते हैं, हैं? घर को साफ करके उसका कूड़ा निकालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। आजकल हमारी गवर्नमेंट भी क्या कह रही है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता करो। स्वच्छता का क्या मतलब, कूड़ा इकट्ठा करो। दिल्ली में एक टैक्सी जा रही थी, उसमें माइक वो लगा हुआ था, लाउड स्पीकर, सब अपना अपना कूड़ा डाल दो, मंत्री जी आ रहे हैं सफाई करने, बाहर डाल दो सड़क पर। अच्छा आप बताओ, तो इसलिए बाबा कहता है कि सतयुग में कूड़ेदान होता है क्या? आप सोचो, जैसे आजकल जाते हो यहाँ गार्बेज बिन पड़ा है, यहाँ डस्टबिन पड़ा है, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ डस्टबिन ऑर्डर किए हैं सफाई के लिए, पर सतयुग में तो होता ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी नहीं होता वहां, तो जो करना है उसी का संकल्प आएगा, जो संकल्प आएगा वो होगा, तो बाकी कूड़े की तो बात छोड़ दो। इसलिए भगवान कहता है कि जब तुम मेरे बच्चे बनते हो तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जिसमें ना पैसे का खर्चा ना कुछ, और आप बेफिक्र बादशाह। तैयार हो उस फार्मूले के लिए? क्यों जी, रिवाइज कराएं आपको फार्मूला? यस, बहुत अच्छा। अब देखो, हम घर को साफ रखना चाहते हैं, कपड़े साफ रखना चाहते हैं, तो जिस जहां से ये खुशी पैदा होनी है, मन, आत्मा का जो इंद्री है, उसमें आप क्या भरना चाहते हो? तो देवता जो थे वो थे सर्वगुण संपन्न, कि हमने गुण भरने हैं और दूसरे के भी गुण भरने हैं, तो जो वो जिस नजर से देखते थे यहां से मुझे गुण मिल जाए, वहां तो था ही गुण ही गुण, लेकिन इकट्ठे तो संगम पर किए थे। और आज क्या हो गया, आज हमारी पेट्रोल की कार में डीजल का इंजन लग गया। आप देखो, हर व्यक्ति जिसको देखता उससे क्या धारण करता है, आप देख लो दुनिया में। बाबा कहता है वेस्ट को बेस्ट करो, और आज के इंजन जो लगे हुए वो बेस्ट को वेस्ट कर देते हैं। हर आदमी को कोई बुराई होगी वो इकट्ठी कर लेंगे, बताओ, तो बुराई इकट्ठी करेंगे और जो मर्जी करो, चाहे तुम जेवर रखो घर में, कपड़े रखो, मकान साफ रखो, अगर बुराई इकट्ठी कर ली तो आप तो दुखी। एक तो काम करो, दो मुंह की बुराई वैसे ही जमा, फिर उसके हिसाब से और जोड़ते जाओ। कोई व्यक्ति एक बाल्टी लेकर सुबह निकले और 6 घर इधर जाए, बेल बजाए और 6 घर इधर जाए और सबको कह दिए अपना कूड़ा मेरी बाल्टी में डाल दो, तो लोग कहेंगे इसका दिमाग को क्या हो गया, भाई किस लिए ले रहे हो जो मुझे अपना ड्राइंग रूम से जाना है? अब बताओ, ये तो हम नहीं करते, पर मन में कूड़ा दूसरे का डाल लेते हैं। रात को भोजन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया पड़ोसी के घर नई कार आई है, बहुत बड़ी बढ़िया कार आई है, तो भोजन छोड़कर देखने चले जाते हैं कहां से ले आया कार, है कार आ गई इसके घर, अच्छा फिर तुमने क्या लेना। अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए, हाँ अब पता लगा कार कहां, फिर तुमने क्या लेना है, आप सोचो। अच्छा, कहते थे, कहते कि ऐसा ही आदमी था, उसने था तो लोभी, किसी ने कहा तू तपस्या कर, भगवान तेरे को वर देगा, फिर तेरे को मौज हो जाएगी, लंबा रास्ता छोड़। उसने बड़ा ध्यान लगा के सारे नियम पालन करके तपस्या करी, देवता प्रकट हो गया, बोल बच्चा तूने बहुत मेहनत की है। देवता को पता था ये ऐसा आदमी है, तीन वर मांग ले, जो चाहिए मांग ले। बड़ा खुश हो गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई। देवता ने हल्का सा कह दिया कि तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, उसको पता था। तो उसने कहा जी मुझे नई कार दे दो। देवता जी कार आ गई सामने, बड़ा खुश। उधर देखा तो पड़ोसी के दो कार, दुखी। देवता ने कहा दूसरा वर मांगो। कहते बढ़िया मकान दे दो, मकान बन गया, बड़ा खुश। उधर देखा तो पड़ोसी के दो मकान, खुशी गए। बोला तीसरा वर मांगो, अब देखो क्या करता है। कहता है कि तपस्या मैंने की, ये देवता कैसा है पड़ोसी को डबल दे रहा है, उसने क्या किया, तो मैं अब देवता को भी मजा सिखाता हूं और पड़ोसी को भी है? उसने कहा जल्दी मांगो। तो कहते मेरी एक आंख फोड़ दो। समझा आपने? अच्छा, इसको कहते हैं नेगेटिव हैप्पीनेस, कि आज हमारी खुशी भी दूसरे को दुख दे के हो गई है। इसलिए बाबा कहता है कि मैंने बच्चों को नंबर टू पहली बात सिखाई कि तुम आत्मा हो, आत्मा में गुण अवगुण रहते हैं, गुण भरो। दूसरी सिखाई क्या, कि पर चिंतन पतन की जड़ है, दुनिया में किसी के भी अवगुण इकट्ठे नहीं करो, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, वो ले लो। एक कूड़ा, कूड़े के ढेर से जो डब्बे इकट्ठे करते हैं बच्चे, वो देखोगे वो भी अपने काम की चीज देखते हैं कि ये चीज मेरे काम के ढेर को नहीं देखते, और हम तो बड़े समझदार मनुष्य हैं। तो बाबा ने क्या कहा, सर्वगुण संपन्न देवता हैं, तो आपको कहां भरने हैं सर्वगुण, सतयुग में जाके या यहां? तो इसलिए अपनी तीसरी नजर को ओपन करो, इन दो आंखों से जो दिखता वो भले देखते रहो, तीसरी ओपन होगी तो सब क्लियर दिखेगा। मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, और उस आनंद को एंजॉय करने के लिए मेरे अंदर गुण चाहिए, तो सबके गुण इकट्ठे करो, ठीक है। अब बाबा कहता है कि तुम करो भी, पर आदत पड़ी हुई अवगुण इकट्ठे करने की, तो फिर उसको कैसे ठीक करो? तो बाबा कहते हैं मैं तुमको शक्ति दूंगा, अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं ज्ञान काफी नहीं है, योग है। तो शक्ति दूंगा तो तुम्हारी वो जो कमजोरी है उसमें मैं विल पावर भरूंगा, और मैं तुम्हें मदद करूंगा ताकि तुम जो चाहते हो वो कर सको। डॉक्टर भी दवाई भी देता है और टॉनिक भी देता है कि दवाई का रिएक्शन ना हो जाए। तो ज्ञान है दवाई और योग है टॉनिक, और योग को अग्नि भी कहा जाता है। आप देखो दुनिया में जितनी चीजें हैं वो खुद खराब होकर दूसरे को ठीक करती हैं। पानी में कपड़ा धोओगे, पानी मैला हो जाएगा, कपड़े को साफ कर देगा। हवा में से कुछ करोगे, हवा गंदी हो जाएगी, आपको साफ कर देगी। सिर्फ अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डालोगे तो अग्नि अपना रूप वही रखेगी, दूसरे का रूप चेंज कर देगी। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। तो ये शक्ति लो, तो मेरे को याद करो, और कुछ शक्ति लेने का तरीका नहीं। जैसे अपना मोबाइल चार्ज करते हो, आजकल तो वायरलेस बहुत है, यहां से दबाओ आपका दरवाजा खुल जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों को मैंने अपना परिचय दिया है कि ना तो मैं सब जगह हूं, ना आत्मा ही परमात्मा है, ना आत्मा निर्लेप है, सब आपको पता है। तो मेरे साथ प्यार से योग लगाओ, और मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे भी बच्चे चाहिए। सतयुग के लिए पनीरी चाहिए, अच्छे अच्छे फलदार बच्चों की। कांटों का जंगल बन गई दुनिया, कांटे दूसरे को चुभ कर वो खुश हो रहे हैं। इसलिए सार क्या निकला, सार ये निकला कि सहयोग ऑटोमेटिक है, और जब कोई व्यक्ति की नजर बदल जाती है वो समझता है लेने में फायदा है, देने में नुकसान है, तो लेवता बन जाता है। आज के सभी मनुष्य लेवता हैं। जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो कहेंगे मेरा क्या फायदा। हम दिल्ली में जहां हमारा सेंटर है उसके पीछे एक बाग है, तो हम कभी कभी सुबह बाग में चले जाते हैं सैर करने। एक दिन मैंने देखा उस बाग में इतने बेंच लग गए, 60-70 बेंच लग गए नए नए। मैंने कहा भी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी हो गई है, ये 60-70 बेंच लगा दिए लोगों के बैठने के लिए। मन में आया, 3 महीने बाद अखबार में आया, एक म्यूनिसपैलिटी का अफसर था, उसने 800-800 रुपए के बेंच 16-1600 में खरीदे, उसमें से पैसा खा गया, इसलिए उसने जितनी जरूरत से उससे ज्यादा बेंच लगवा दिए, अब वो पकड़ा गया। अब बताओ, तो जब व्यक्ति ये सोचे मेरा कितना फायदा है इसमें, तो क्या होगा, लेने वाले हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए बाबा कहता है हर एक को देना है, लेकिन जिसको दान या सहयोग कहते हैं ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो दे ना सके, क्योंकि स्थूल चीज नहीं है। आपने कंबल दान करोगे तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, कंबल सारी दुनिया गरीब है। सिर्फ देने का हमने एटीट्यूड रखना बस। कहते हैं एक राजा था, अब वो राजा बहुत अमीर था, बड़ा दयालु था। उसने क्या किया कि अपनी प्रजा को कहा कि सुबह आ जाया करो 7 बजे, मैं खूब दान करूंगा। तो आते थे, बहुत रोज दान करता था, बड़ी लाइन लग जाती थी। एक फकीर भी था, वो भी लाइन में लगता था। अब वो क्या करता था, जब लाइन में उसकी टर्न आती थी ना लेने की, तो दूसरे को दे देता था, चले जाता था, अपने तू ले ले, फिर जाके लाइन में लग जाता था। फिर जब उसकी टर्न आती थी तो दूसरे तू ले ले, फिर चले जाता था। तो सारे राजधानी में मशहूरी हो गई, एक ऐसा फकीर है देखो, वो लाइन में खड़ा रहता है, जब उसकी टर्न आती है तो दूसरे को देके फिर लाइन में लग जाता है। तो राजा की मशहूरी नहीं हुई, फकीर की हो गई। अब राजा को ईर्ष्या हुई कि मैं इतना धन दान कर रहा हूं, है जी, और मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मेरी कोई खबर नहीं आ रही, समाचार नहीं आ रहा, और सारे टीवी चैनल उस फकीर की फोटो दिखा रहे हैं कि देखो भाई ये फकीर ऐसे करता है। तो उसने गुस्से में आके फकीर को बुलाया, जब उसकी टर्न है, कहता जो लेना ले, डबल ले ले, पर तो दोबारा लाइन में नहीं लगना। उसने कहा जी देखिए महाराज, आपके पास जो है वो दे रहे हैं, मेरे पास जो है वो दे रहा हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, टर्न नहीं है, मैं वो दे देता हूं, मुझे उसमें खुशी आती है। अब आप सोचो, इसलिए ये स्थूल का मामला नहीं है, ये मामला सूक्ष्म का। तब हम देखते हैं कहां देवता देते रहते थे और भरपूर थे। उनकी मूर्तियों को भी आज लोग जाके, अपने आप गरीब व्यक्ति भी होगा तो प्रसाद चढ़ाएगा, मांगते तो नहीं, टैक्स तो नहीं लगाते, अपनी मर्जी से, और खुश होगा कि मैंने देवता को प्रसाद चढ़ा दिया, देवता का कीर्तन कर दिया। इसलिए नहीं करता कि देवता खुश हो जाए, मैं खुश हो जाता हूं। वो थे, और आज क्या हो गया, आज हो गया मनुष्य। बाबा कहते हैं मनुष्य, तो आज भी बाबा ने कहा मनुष्य की क्या डिग्री है। तो आज के लिए क्या कहते हैं, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, हम अपने भाई बहनों को लूट रहे हैं, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, है डराता आदमी और डर रहा है आदमी। किसका डर किसको है, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, कैसी नादानी की बातें कर रहा है आदमी। तो बाबा कहते हैं इस चक्कर से कौन छुड़ाए, बड़े बड़े समझदार लोग इसी में हैं, वो मोटे तरीके यूज कर रहे हैं, ये नहीं करते कि जहां से गंदगी पैदा होती है वहां उसको खत्म करें, पेड़ की जड़ को पानी दें, पत्ते पत्ते को साफ कर रहे हैं, और आप बढ़ाते जाओ वो आती जाएगी, सारी जिंदगी लगे रहो, डॉक्टर लगे हुए हैं, मरीज आते जाते हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, हेल्थ का मतलब आजकल हॉस्पिटल हो गया। इसलिए बाबा कहता है मैंने बच्चों के बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं, और थोड़े से बच्चे हैं, और कुछ नहीं तो मुझे पहचाना तो सही, कि अरे ऑलमाइटी भगवान आया है बेहद का वर्षा देने, है सुप्रीम फादर। कल मुरली में बाबा ने कहा था एक सुप्रीम है, बाकी नॉन सुप्रीम है ना, कितना अच्छा है, एक शब्द में सारा ज्ञान मिल जाता है। एक सुप्रीम है, बाकी नॉन सुप्रीम है और एक एक ही है, बाकी सब अनेक होंगे। महात्माएं, देवताएं, पुण्य आत्माएं, वो होगा परमात्मा, ये नहीं होता परमात्मा है। और क्या चाहिए? सिंपल बात भी लोगों की समझ में नहीं आती, वो समझते हैं हठ करो, उल्टे खड़े हो जाओ, है जी, पद्मासन लगाओ। तो बाबा कहता है मैंने उल्टे खड़े होने को नहीं कहा था, कीप योर हेड इन बैलेंस, कि अपने दिमाग को बैलेंस में रखो, ना कि उल्टे खड़े होकर बॉडी को बैलेंस करो। मैंने कहा था कमल पुष्प में समान रहो, आपने पद्म आसन लगाना शुरू कर दिया, बताओ है? तो उसके कन्वर्ट करके ज्ञान से कुछ का कुछ कर दिया। इसलिए बाबा के प्यारे बच्चों, सहयोग हमें तो देना नहीं पड़ता, नेचुरली हमारा एटीट्यूड ही हो जाता है देने का, देने वाला सदा बादशाह और खुश। आपने किसी को कुछ देना हो या 2 रुपया देना हो, आपका हाथ ऐसे होगा दे रहा हूं, और लेना हो 1000 तो हाथ ऐसे हो जाएगा, सीधी बात है। तो ये अच्छा या ये अच्छा? इसलिए सपने में भी बाबा कहता है कभी भी लेने का ख्याल नहीं रखना, आप अभी संतुष्ट हैं। आज बाबा ने कहा ना, संतुष्ट आत्मा मेरे नजदीक है, तो इसलिए हम सब संतुष्ट हैं। संतोषी माता के भजन गाने की जरूरत नहीं है, देने का अप्रोच रख लो, आप अभी संतुष्ट हैं। ओम शांति।